एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जो आपको मतलब अंदर तक झकझोरने की ताकत रखता है। अर्नेस्ट जे गेन्स का 1993 में आया उपन्यास अ लेसन बिफोर डाइंग,
इसे नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी मिला था।
हाँ, और ये उन किताबों में से है जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाती है।
बिल्कुल, इसकी कहानी हमें ले जाती है 1940s के दशक के लुइजियाना में,
वो दौर जब अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में जिम क्रो कानून थे।
हाँ, मतलब नस्ल के आधार पर समाज पूरी तरह बटा हुआ था और अश्वेत लोगों के साथ अन्याय वो तो एक आम बात थी।
और लेखक अर्नेस्ट गेन्स खुद उसी माहौल में पले बढ़े तो उनकी कलम से जो निकला है वो सिर्फ कहानी नहीं, जिया हुआ सच लगता है।
सही कहा।
तो आज हमारी चर्चा सिर्फ कहानी पर नहीं होगी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब समाज किसी से उसकी इंसानियत छीनने पर तुला हो तो गरिमा का असली मतलब क्या होता है।
ये दो आदमियों के सफर की कहानी है, एक जो मौत की दहलीज पर है और दूसरा जो जीते जी एक तरह से मर चुका है।
तो कहानी शुरू कहाँ से होती है?
कहानी शुरू होती है एक अदालत से। माहौल में बहुत तनाव है। कटघरे में एक नौजवान अश्वेत लड़का खड़ा है, जेफरसन।
उस पर इल्जाम है एक शराब की दुकान के मालिक की हत्या और लूट का।
पर सच तो ये है कि वो बस गलत वक्त पर गलत जगह था। उसके दो साथी दुकान लूटने की कोशिश करते हैं, गोलीबारी होती है और दुकान का श्वेत मालिक और वो दोनों साथी मारे जाते हैं।
और बचता है सिर्फ जेफरसन।
हाँ, अकेला, जिसके हाथ में पैसे हैं और आसपास तीन लाशें।
और उस दौर की न्याय व्यवस्था में जहाँ जूरी के सभी सदस्य श्वेत थे तो फैसले में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी।
उसे दोषी मान लिया गया, लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जिसे पढ़कर मैं सच में हिल गई थी।
आप उसके वकील की दलील की बात कर रही हैं?
हाँ, उसका अपना वकील जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जूरी के सामने ऐसी दलील देता है जो उसे मौत की सजा से भी बदतर जख्म देती है।
वो क्या कहता है?
वो कहता है, इस लड़के को मौत की सजा देकर आपको क्या मिलेगा? इसे बिजली की कुर्सी पर बिठाना तो ऐसा ही है जैसे किसी सुअर को बिठाना।
वो उसे जानवर कहता है।
हाँ, कि इसमें सोचने समझने की अकल नहीं है। वो उसे बचाने के लिए उसे इंसान मानने से इनकार कर देता है।
बाप रे, ये तो बचाने से ज्यादा तबाह करने वाली बात हो गई।
बिल्कुल, ये वो जख्म है जो शरीर पर नहीं आत्मा पर लगता है।
और यही होता है, जेफरसन को मौत की सजा तो मिलती ही है पर वो शब्द उसके अंदर बैठ जाते हैं।
वो खुद को सूर मानने लगता है और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है।
हाँ, क्योंकि जेफरसन की धर्म माता मिस एमा इस ख्याल से ही टूट जाती हैं कि उनका बेटा ये मानते हुए मरेगा कि वो एक जानवर है।
और वो मदद के लिए पहुंचती है ग्रांट विगिन्स के पास, जो उस छोटे से समुदाय का एकलौता पढ़ा लिखा शख्स है, एक स्कूल टीचर।
और वो ग्रांट को एक लगभग नामुमकिन काम सौंपती है।
वो चाहती है कि ग्रांट जेल जाए और जेफरसन को उसकी मौत से पहले एक आखिरी सबक सिखाए।
सबक ये कि वो एक इंसान है, सुअर नहीं।
हाँ, वो उसे सिखाए कि जब उसे बिजली की कुर्सी तक ले जाया जाए तो वो एक मर्द की तरह सिर उठाकर चले।
और ग्रांट के लिए ये नामुमकिन ही है क्योंकि वो तो खुद को हारा हुआ महसूस करता है।
बिल्कुल,
यहीं से कहानी का असली द्वंद्व शुरू होता है ना? एक आदमी जो मर रहा है और दूसरा जो जीना ही नहीं चाहता।
तो ग्रांट एक बहुत ही जटिल किरदार है। वो यूनिवर्सिटी तक पढ़ा है लेकिन वापस अपने गांव में आकर बच्चों को पढ़ा रहा है और अंदर से मतलब घुटन महसूस कर रहा है।
उसे लगता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो उस नस्ल भेदी व्यवस्था को तो बदल नहीं सकता। वो बस वहां से भाग जाना चाहता है।
तो उसकी शुरुआती आनाकानी सिर्फ अहंकार नहीं के बल्कि एक गहरी हताशा थी
कि वो क्या सिखाएगा जब उसे खुद ही कोई उम्मीद नजर नहीं आती।
हाँ, वो मिस एमा और अपनी चाची टांटेलू से कहता भी है, मैं किसी को मर्द बनना कैसे सिखा सकता हूँ जब मैं खुद को मर्द जैसा महसूस नहीं करता।
उसे ये मिशन एक बोझ लगता है,
एक और जंजीर जो उसे उसी दुनिया में बांध रही है जिससे वो नफरत करता है। उसकी शुरुआती मुलाकातें जेफरसन से बहुत मतलब बहुत बुरी रहती हैं।
और जेफरसन का क्या हाल है जेल में?
जेफरसन ने तो उस सुअर वाली पहचान को पूरी तरह ओढ़ लिया है। वो किसी से बात नहीं करता, चुपचाप जमीन को घूरता रहता है। जब मिस एमा उसके लिए खाना लेकर जाती हैं, तो वो उसे हाथ से खाने से मना कर देता है और घुटनों के बल बैठकर एक जानवर की तरह जमीन से खाता है।
ये देखना दिल तोड़ने वाला होगा।
बहुत। वो जैसे समाज को आईना दिखा रहा हो, तुम मुझे जानवर समझते हो ना, तो लो मैं जानवर ही बन जाता हूँ।
ये एक तरह का मौन विद्रोह है। लेकिन फिर ग्रांट बहुत नानुकर के बाद कुछ ऐसा करता है जो इस चुप्पी की दीवार में पहली दरार डालता है।
वो जेफरसन के लिए एक छोटा सा रेडियो ले जाता है
और ये रेडियो बहुत अहम हो जाता है।
हाँ, ये पहली चीज है जो सिर्फ और सिर्फ जेफरसन की है। ये बाहरी दुनिया से उसका एक कनेक्शन है, एक ऐसी चीज जिस पर उसका नियंत्रण है।
लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब ग्रांट उसे एक नोटबुक और पेंसिल देता है।
ये कमाल की बात है ना।
हाँ,
कि जिस चीज ने उसे तोड़ा, शब्द यानी वकील का वो सुअर शब्द,
वही चीज यानी शब्द लिखने की ताकत उसे वापस जोड़ती है।
बिल्कुल, ये भाषा की दोधारी तलवार को दिखाता है।
जब तक वो लिख नहीं रहा था, तब तक दूसरे लोग उसे बता रहे थे कि वो कौन है।
लिखने से पहली बार उसे खुद से ये पूछने का मौका मिला, मैं कौन हूँ? वो अपनी डायरी में बहुत गहरे सवाल लिखने लगता है। वो ग्रांट से पूछता है, हीरो कौन होता है?
और इस सवाल का जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में वो खुद एक हीरो बनने की राह पर चल पड़ता है।
इस सफर में दो और किरदार भी बहुत अहम हैं।
एक तो ग्रांट की प्रेमिका विवियन।
हाँ, वो ग्रांट के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी है। जब भी ग्रांट अपनी हताशा में डूबता है, विवियन उसे सहारा देती है और उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है।
और दूसरा वो डेप्यूटी पॉल बोनिन।
हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प पात्र। वो जेल का एक श्वेत अफसर है, लेकिन वो उस सिस्टम के बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो ग्रांट और जेफरसन दोनों के साथ सम्मान से पेश आता है।
वो उस क्रूर व्यवस्था के अंदर इंसानियत का एक छोटा सा टापू है।
बिल्कुल, जो दिखाता है कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं।
तो जैसे जैसे जेफरसन की फांसी की तारीख नजदीक आती है, हम देखते हैं कि जेफरसन और ग्रांट दोनों बदल रहे हैं।
एक दिन ग्रांट एक बार में कुछ लोगों से लड़ पड़ता है जो जेफरसन का मजाक उड़ा रहे होते हैं।
ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये दिखाता है कि अब वो इस मिशन से कितनी गहराई से जुड़ चुका है। ये अब उसके लिए सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि उसका अपना संघर्ष बन गया है।
और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। फांसी से एक दिन पहले शेरिफ की इजाजत से जेफरसन को जेल के बड़े कमरे में अपने परिवार और समुदाय के लोगों से मिलने दिया जाता है।
उसे बेड़ियों से आजाद कर दिया जाता है।
हाँ,
वो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। उस सीन में एक अजीब सी शांति और गरिमा है।
जेफरसन अब वो चुप सेमावा लड़का नहीं है।
नहीं, वो शांत है, सबसे बातें कर रहा है और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है।
वो ग्रांट को बताता है कि उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया है।
वो कहता है, एक हीरो होता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है।
वो समझ चुका है कि एक इंसान की तरह मरकर वो मिस एमा के लिए, ग्रांट के लिए और अपने पूरे समुदाय के लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहा है।
वो अपनी मौत को एक मतलब दे रहा है।
फिर फांसी का दिन आता है। ग्रांट में ये सब देखने की हिम्मत नहीं होती। वो अपनी क्लास के बच्चों को जल्दी छुट्टी दे देता है और उन्हें घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने को कहता है। वो खुद भी वहीं बैठा रहता है
और ठीक उसी वक्त उसे खिड़की के बाहर एक तितली दिखाई देती है।
ये सिर्फ एक सुंदर छवि नहीं है।
नहीं, एक कैटरपिलर जो पूरी तरह से बंधा हुआ महसूस करता है, अपने ककून में कैद।
वो एक तितली बनकर आजाद होता है। ये जेफरसन की यात्रा का सटीक प्रतीक है ना?
हाँ, समाज के बनाए ककून में सुअर की तरह कैद एक शख्स अपनी आत्मा के दम पर रूपांतरित होकर आजाद हो गया।
कुछ देर बाद डिप्टी पॉल दरवाजे पर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज भारी है।
वो ग्रांट को बताता है कि जेफरसन उस कमरे में मौजूद सबसे मजबूत इंसान था।
उसने बिना किसी डर के सिर उठाकर अपनी मौत का सामना किया।
और फिर पॉल जेफरसन का आखिरी संदेश देता है।
नानान से कहना, मैं चल कर गया।
मैं चल कर गया, बस ये तीन शब्द।
कितनी ताकत है इन शब्दों में।
पूरी किताब का सार, पूरी लड़ाई का नतीजा, ये उस सुअर वाली छवि का सीधा और शक्तिशाली जवाब है।
ये गरिमा की एक ऐसी घोषणा है जो मौत भी नहीं छीन सके। वो चला, झुका नहीं।
पॉल जेफरसन की डायरी ग्रांट को सौंपता है और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, जो उस बंटे हुए समाज में उम्मीद की एक बहुत बड़ी निशानी है।
उपन्यास का अंत ग्रांट के रोने से होता है, लेकिन ये आंसू हताशा के नहीं है, ये गर्व के आंसू हैं, समझ के आंसू हैं।
एक अनपढ़ लड़के ने, जिसे दुनिया ने जानवर कह दिया था, एक पढ़े लिखे टीचर को इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था।
तो अगर हम देखें, इस पूरी चर्चा में कुछ बड़ी बातें उभर कर आती हैं।
सबसे पहली और सबसे जरूरी है गरिमा की खोज। ये कहानी हमें बताती है कि गरिमा या इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो समाज हमें देता है या हमसे छीनता है।
जेफरसन ने साबित किया कि इसे सबसे मुश्किल हालात में भी अंदर से कमाना पड़ता है।
दूसरा है प्रणालीगत नस्लवाद का क्रूर चेहरा। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे अदालत, कानून और समाज सब मिलकर किसी एक इंसान को सिर्फ उसकी नस्ल की वजह से अमानवीय बना सकते हैं।
जेफरसन की कहानी सिर्फ एक गलत फैसले का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक पूरी सोच का नतीजा थी।
और आखिर में भाषा और शिक्षा की शक्ति।
हाँ, हमने देखा कि कैसे सुअर जैसा एक शब्द किसी की आत्मा को मार सकता है।
और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे एक नोटबुक और पेंसिल, मतलब लिखने की ताकत, उसी इंसान को उसकी खोई हुई पहचान और आवाज लौटा सकती है।
यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने और अपना आत्मसम्मान पाने का जरिया है।
ये कहानी एक अंधेरी सुरंग से शुरू होती है, लेकिन उसके अंत में उम्मीद की एक रोशनी छोड़ जाती है।
ये जेफरसन की नैतिक जीत की कहानी है।
ये उपन्यास सिखाता है कि गरिमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई हमें देता है या हमसे छीन सकता है।
ये एक ऐसी चीज है जिसे सबसे मुश्किल और अंधेरे हालातों में भी भीतर से अर्जित किया जाता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।